मत्ती 27 अध्याय 44 पद। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर लटकाए गए थे उसकी निंदा करते थे। लुका 23 अध्याय 39 से 41 पद। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यूहन्ना 19 अध्याय 34 पद। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लोहू और पानी निकला। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय दर्शकों, क्रूस के संदेश का यह 17वां सत्र है। पिछले सत्र में मैंने यीशु के क्रूसारोहण के प्रावधान के विषय में बताया था, जिसमें उसके हाथों और पैरों पर कीले ठोकी गई और उसके कपड़े उतार लिए गए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया, वह श्रापित हुआ और वह क्रूस पर लटकाया गया। हम जो इस पर विश्वास करते हैं अपने पापों से क्षमा कर दिए गए हैं और व्यवस्था के श्रापों से मुक्त हो गए हैं। परमेश्वर की वो संतान जो यीशु में विश्वास करते हैं अपने उद्धारकर्ता के तौर पर और उसे स्वीकारते हैं, वे बीमारियों, कमजोरियों, गरीबी और सब प्रकार की दूसरी आपदाओं से मुक्त रहते हैं। इसीलिए जिन्होंने प्रभु को स्वीकार कर लिया है और परमेश्वर के वचनानुसार जीवन बिताते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। यदि हम वचन में रहते हैं फिर भी परीक्षा और कसौटी तो आएंगी, परंतु ये परीक्षण आशीष के लिए होगी। याकूब 1 अध्याय 12 पद कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इसीलिए यदि आप परीक्षाओं को धन्यवाद और प्रसन्नता से पार करते हैं, परमेश्वर स्वीकारेंगे कि आपने धन्यवाद के साथ परीक्षाओं को पार किया है। इस वचन का अगला हिस्सा कहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और साथ ही मत्ती 5 अध्याय 10 पद भी कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर आप धार्मिकता के लिए काम करते हुए सताए जाते हैं या फिर प्रभु के नाम के लिए, यदि आप धन्यवाद से उन्हें स्वीकारते हैं तो फिर आप आत्मिक और भौतिक आशीषें प्राप्त करेंगे। तो फिर यदि आप कसौटियों में और परीक्षाओं का सामना करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जिए, तो आपको क्या करना चाहिए? इस मामले में आपको अपनी गलतियों से पश्चाताप करना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर शर्तें हैं। मैंने हमेशा आपको उन चीजों को बताया है, जब वो जो पहले विश्वास और दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं यदि वे पाप करें तो ऐसे पाप है जो क्षमा हो जाते हैं यदि वे पश्चाताप करते हैं। विश्वास के तीसरे स्तर पर ऐसे पाप होते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तीसरे या ऊंचे विश्वास के स्तर पर ऐसे पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं और दूसरे पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना ना करें जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं। यदि आप विश्वास के तीसरे या ऊंचे स्तर पर है, आप जानते हैं कि कौन से पाप मृत्यु की ओर ले जाते हैं। यदि लोग इच्छा से उन पापों को करें तो उनका उद्धार नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम उनके विषय में प्रार्थना ना करें। प्रिय श्रोताओं, छोटे बच्चे के मामलों में जो अपना विश्वास प्रदर्शित नहीं कर सकते, आपको क्या करना चाहिए यदि वे बीमार हो जाएं या कोई दुर्घटना से ग्रसित हो जाएं? इन मामलों में वे परमेश्वर के कार्यों का अनुभव उनके माता पिता के विश्वास के द्वारा कर सकते हैं। एक बार एक बड़ा अंगूर का दाना 2 महीने के बच्चे की श्वास की नली में चला गया और उसकी स्थिति नाजुक हो गई। अंगूर उसके फेफड़ों में चला गया और खून फेफड़ों में जमा हो रहा था, इस कारण वह श्वास नहीं ले पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई आशा नहीं है, क्योंकि वह बच्चा छोटा है इसलिए ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। और अंत में मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी हो गई और मस्तिष्क में समस्या आ गई थी। उन्होंने कहा भले ही वह बच भी जाए तो अभी वह सामान्य तौर पर विकसित नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं होगी तो कोशिकाएं मर जाएगी। इस परिस्थिति में उसके अभिभावकों ने परमेश्वर पर विश्वास करने का निश्चय किया और परमेश्वर के वचनानुसार जीवन न जीने के लिए पश्चाताप किया। तब उन्होंने मेरी प्रार्थना, जो कि टेलीफोन से स्वचालित प्रतिक्रिया सेवा में ऑटोमेटिक रिस्पांस सर्विस रिकॉर्डेड थी, उसे ग्रहण किया। फिर बच्चा बहुत ही जल्दी स्वस्थ होने लगा। जो बच्चा इंसेक्टिव केयर यूनिट में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, उसे एक सप्ताह में अस्पताल से मुक्त कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक्सरे लिया और अभिभावक और चिकित्सक एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे के मस्तिष्क में कोई समस्या नहीं थी और उसके फेफड़ों में से अंगूर पूरी तरह से, यहाँ तक कि उसका बीज भी गायब हो गया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा उसे नष्ट कर दिया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इसी प्रकार से परमेश्वर के वो संतान जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि वे विश्वास से प्रार्थना करें तो वे प्रभु के नाम से उत्तर और आशीष प्राप्त कर सकते हैं, जिसने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया। लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा जो सबसे बड़ी आशीष है, वह यह है कि हम स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं, नरक में नहीं। नरक एक भयानक स्थान है। मरकुस 9 अध्याय 48 से 49 पद कहता है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता ना आग भुजती है, क्योंकि प्रत्येक जन आग से नमकीन किया जाएगा। यह वर्णन करता है कि नरक में जाने वाले किस प्रकार की सजा पाएंगे। मैंने एक दर्शन देखा था जिसमें नरक में आत्माएं अपने शरीरों को ऐसे मरोड़ रही थी जैसे मानो वे बहुत कठिन नृत्य कर रही हो, जैसे गर्म बर्तन में नमक तड़पता है। आग की झील की गर्मी और दर्द के कारण वे अपने शरीरों को ऐसे ही ऐंठ रहे थे और कुदा रहे थे। वहाँ ना केवल आग की झील है परंतु गंधक की भी झील है, जो कि आग की झील से 7 गुना गर्म है। गंधक की झील उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने आग की झील की अपेक्षा गंभीर पाप किए हैं। जो आत्माएं गंधक की झील में थी, वे ना तो कूदती थी ना चिल्लाती थी। दर्द और व्यथा इतनी तीव्र थी कि वे अपने शरीरों को हिला भी नहीं सकते थे या ना कोई आवाज निकाल सकते थे। नरक में आत्माएं अनंत काल के दंड को बिना विश्राम लिए आग की झील और गंधक की झील में भुगतती है, और यदि वे मरना भी चाहे तो अभी नहीं मरती। इसलिए बाइबल कहती है, हमारे लिए यह बेहतर है कि हम अपने हाथ और पैरों को काट दें, ताकि हम पाप ना करें और नरक ना जाएं। हमारे चर्च के उद्घाटन के बाद लंबा समय नहीं हुआ था, परमेश्वर ने मुझे नरक की आग की झील और गंधक की झील दिखाई। वहाँ एक बहुत बड़ी आग की झील है। वो जो आग की झील में है वो अपनी छाती से ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नाइट क्लब में नाच रहे हैं, वैसे वो नाच रहे हो। ये उसी परिस्थिति के समान है, क्योंकि वो इतना गर्म है कि उनका शरीर गंभीरता से ऐंठ रहा है। इस तरह से दर्द में उनका शरीर ऐंठ रहा है, लेकिन गंधक की झील में जो लोग उसमें है वो अपनी गर्दन तक उसमें है, इसीलिए वे अपने शरीरों को भी नहीं हिला सकते, ना कोई आवाज निकाल सकते हैं। आग की झील में वे कम से कम चिल्ला तो सकते हैं, परंतु गंधक की झील में वे चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि वह उतना गर्म है। मान लीजिए आप सताए जाते हैं, तब आप चिल्ला सकते हैं जब दर्द सहने योग्य हो, परंतु यदि वास्तव में वह सताव असहनीय हो तो आप केवल कराह सकते हैं। वे गंधक की झील में चिल्ला भी नहीं सकते, और ये सदा काल तक चलता रहता है, और यह बिलियन सालों तक समाप्त नहीं होगा। उन्हें अनंततः उस सताव में रहना पड़ेगा, उस नर्क की आग में। लेकिन जो सजा नर्क की किताब में बताई गई है वो वास्तविकता में आसान सजाएं हैं। तो फिर अनंत सजा जो आग की नर्क की सजा है, कब वह प्रत्येक आत्मा के लिए निर्धारित की जाएगी, ये सब नर्क किताब में है। 7 साल का महाक्लेश काल होगा, और उसके बाद 1000 वर्ष का इस धरती पर राज्य होगा, और वह 1000 वर्ष के राज्य के समाप्ति के बाद बड़ा श्वेत न्याय सिंहासन होगा, और उसके बाद उन्हें नर्क में फेंक दिया जाएगा। वे आग और गंधक की झीलों में अनंत काल के लिए दुख भोगेंगे। तब तक उन्हें वह दंड मिलेगा जिनकी व्याख्या नर्क पुस्तक में की गई है, परंतु नर्क में फेंके जाने से पहले उन्हें अधलोक में किसी प्रकार का आराम मिलेगा। मान लीजिए एक वैवाहिक जोड़े को एक ही प्रकार की सजा मिल रही है। यदि पति को यातना दी जा रही है तो पत्नी को देखते हुए कुछ आराम मिलता है, लेकिन वह देखते देखते चुप नहीं रहेगी, परंतु वह अपने पति को श्राप देती है कि उसके कारण वह नर्क में गई। इस कारण उसे कम से कम कुछ सेकंडों की राहत वहां पर मिलती है, परंतु वे जो आग और गंधक की झील में फेंके जाएंगे उन्हें किसी प्रकार का आराम कभी नहीं मिलेगा। उनमें से जिन्होंने नर्क को देखा है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उनमें से कुछ कहते हैं कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के दंड वहां पर देखे। आग और गंधक की झील के अलावा उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोगों के शरीरों के चारों ओर सांप लिपटे हुए हैं, उकाब लोगों की आंखों को नोच रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोगों को भाले, तलवार और सुइयों से यातना दी जा रही है। परंतु बाइबल निश्चित रूप से कहती है कि नर्क आग और गंधक की झील है, इसलिए वहाँ स्थान जहाँ दूसरे प्रकार के दंड दिए जाते हैं वह अधलोक है। अधलोक वह स्थान है जहां मृतक आत्माएं जिनका उद्धार नहीं हुआ अंतिम न्याय के लिए प्रतीक्षा करेगी, जो कि बड़ा श्वेत न्याय सिंहासन है। यह स्थान भी व्यापक रूप से नर्क से संबंध रखता है और दर्द भी बहुत तीव्र होता है, पर यह वास्तविक नर्क नहीं है। वे आत्माएं जिन्हें यहाँ दंड मिलता है न्याय से पहले, वे आग और गंधक की झील में जाएगी न्याय के बाद, और आग और गंधक की झील के दंड और दर्द की तुलना अधलोक के दंडों से नहीं की जा सकती। यदि आप नर्क के भय को जानते हैं तो आप अपने हृदय की गहराई से अंगीकार करेंगे कि अपने हाथ और पैरों को काटना बेहतर है, बजाय इसके कि आप नर्क में जाएं। जब मुझे इस भयानक नर्क के बारे में पता चला तो मैंने बार बार अपने मन में निश्चय किया कि मैं निश्चय किसी भी सदस्य को इस नर्क में गिरने नहीं दूंगा, और क्योंकि मैं बहुत दुख महसूस करता हूं कि इस संसार में बहुत सी आत्माएं नर्क की ओर जा रही है क्योंकि वे सत्य को नहीं जानती। मैं अपनी बेहतर कोशिश कर रहा हूँ संसार की सेवकाई में कि एक और आत्मा बचा सकूं, परंतु धन्यवाद के साथ आप सबको जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, अपने पापों से क्षमा मिली है उन दुखों के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर उठाए, और आप स्वर्ग के राज्य में जाने की योग्य हो पाए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने होठों से अंगीकार करने के द्वारा माफ किए जाएंगे कि मैं प्रभु विश्वास करता हूँ। पहला यूहन्ना 1:7 पर कहता है, परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसे वह स्वयं ज्योति में है, अर्थात हमारा पिता परमेश्वर ज्योति में है, और यहाँ ज्योति का अर्थ है सत्य और भलाई जिसमें कोई बुराई नहीं है, और हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस पद में हम देख सकते हैं कि पापों की क्षमा के लिए एक शर्त है, और शर्त यह है कि हमें ज्योति में चलना है। बाइबल में दोनों पुराने और नए नियम में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि यदि भी हम पाप करते भी रहें तो भी बचाए जाएंगे। परमेश्वर, भविष्यवक्ताओं, यीशु ने और यीशु के चेलों ने जो शिक्षा हमें दी है वो यह है कि हमें पापों को दूर करना है और पवित्र बन जाना है। मत्ती 7:21 पद कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। केवल तब जब हम पश्चाताप करते हैं, पापों को छोड़ देते हैं और फिर से पाप करने का प्रयत्न नहीं करते और ज्योति में चलते हैं, तो हमारे पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा किए जा सकते हैं। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, बहुत से लोग क्रूस पर चारों ओर जमा थे और यीशु का उपहास और अपमान कर रहे थे। उस समय वहां पर दो अपराधी भी यीशु के दोनों ओर लटकाए गए थे। मत्ती 27:44 पद कहता है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। परंतु लूका 23:39-43 पद कुछ अलग बातें कहता है। जब एक अपराधी यीशु पर अपमानी से वार कर रहा था, दूसरे अपराधी ने उसे डांटा, तो फिर बाइबल में इस तरह का अंतर क्यों पाया जाता है? यह भी परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर चाहता था कि बाइबल के पाठक जब बाद में इसे पढ़ेंगे तो वह उस दृश्य को वास्तविकता में अनुभव कर सके। यीशु के क्रूसारोहण का दृश्य आज के समान किसी वीडियो के द्वारा अंकित नहीं किया जा सकता था और केवल शब्दों में ही लिखा जा सकता था। बाइबल में सब चीजों को विस्तार पूर्वक, जो मनुष्यों की खेती और उद्धार के मार्ग के विषय में लिखना, यहाँ तक कि हजारों पुस्तकें भी काफी नहीं होगी। इस भाव से क्रूसारोहण के दृश्य का सारांश किया गया है और परमेश्वर ने इस प्रकार से इसे अंकित किया है कि हम उस दृश्य को बहुत ही वास्तविकता से अनुभव कर सके। आप इस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश क्यों नहीं करते? गुलगुथा में 3 क्रूस है और वहाँ पर भीड़ जो वहाँ पर एकत्रित है ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रही है, और रोम के सैनिक अपने भाले तलवारों के द्वारा भीड़ को रोक रहे हैं, और लोग अर्ध गोलाकार स्थिति में क्रूसों के चारों ओर खड़े हैं और बीच में सैनिक है। इस प्रकार से व्यक्ति किस तरफ है वो अलग अलग बातों को उसके अनुसार सुन रहे थे। क्रूस ऊंचे स्थानों पर थे और भीड़ निचले स्थानों में थी, और यदि कोई उस अपराधी की तरफ खड़ा है जो यीशु का अपमान कर रहा है, वह व्यक्ति साफ तौर पर उसे सुन सकता था कि वो क्या कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ के अपराधी को वह सही से नहीं सुन पा रहा था। प्रभु का क्रूस बीच में था और एक तरफ का व्यक्ति उस अपराधी को जो उसके नजदीक था साफ तौर पर सुन सकता था, लेकिन दूसरी तरफ के अपराधी को वह साफ तौर पर नहीं सुन सकता था। इसलिए दूसरे तरफ के अपराधी ने जब पहले अपराधी को डांटा तो उस तरफ के खड़े व्यक्ति वह उस अपराधी को साफ तौर पर नहीं सुन पा रहा था, और ऐसा भी लग रहा था कि वह दूसरा अपराधी यीशु से बातें कर रहा है जो कि बीच में था, जबकि वास्तविकता में वह पहले अपराधी से बातें कर रहा था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह यीशु से बातें कर रहा है, इसलिए वो लोग उसे साफ तौर पर नहीं सुन पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर था, वहाँ ताने मारे जा रहे थे, उपहास उड़ाया जा रहा था, और क्योंकि अपराधी भी क्रूस पर मर रहे थे, इसलिए वह साफ तौर पर बातें नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में वो अपराधी जिसने पश्चाताप किया, उसने दूसरे अपराधी को डांटा जो यीशु का अपमान कर रहा था। लेकिन वह व्यक्ति जो उस अपराधी की तरफ खड़ा था जो यीशु का अपमान कर रहा था, उसे ऐसा लगा कि वह अपराधी जिसने पश्चाताप किया वह भी यीशु का अपमान कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति जो उस अपराधी की तरफ खड़ा था जो पश्चाताप कर रहा था और यीशु के सामने, वह साफ तौर पर सुन पा रहा था दोनों यीशु और उस अपराधी की बातें, और उसने साफ तौर पर लिखा। हालांकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सही और गलत को सही से लिखा सकते थे जो कुछ हुआ था, और उसी प्रकार से उसे अंकित कर सकते थे, लेकिन इन अभिलेखों में इस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। वो इसीलिए हुआ ताकि जो बाइबल पढ़े पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वे उस वास्तविक स्थिति को यथार्थवादी तौर पर महसूस कर सके, जैसे मानो वो स्वयं उस दृश्य को देख रहे हो। बाइबल की तमाम 66 किताबें परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई हैं, उनमें किसी भी प्रकार की गलतियां दोष नहीं हैं। प्रिय श्रोताओं, बहुत घंटों तक बहुत प्रकार के दर्द को यीशु ने क्रूस पर सहा और अंत में अपनी श्वास ली। यूहन्ना 19 अध्याय 31 पद कहता है, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था कि सब्त के दिन शव क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सब्त एक विशेष दिन था। अतः यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं, कि उन्हें वहां से ले जाया जा सके। वह दिन शुक्रवार का था जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे। दूसरे दिन शनिवार था जो यहूदियों के लिए सबत था, क्योंकि सबत के दिन शापित शव क्रूस पर नहीं लटका रह सकता था। यहूदियों ने राज्यपाल से पूछा कि शवों को क्रूस पर से नीचे उतार लिया जाए। यदि आप वे जो क्रूस पर लटके थे उनकी टांगे तोड़ते हैं, तो वे अपने शरीर का भार अपनी टांगों पर और अधिक समय तक नहीं संभाल सकते, इसलिए उनका दम घुटेगा और वे जल्दी मर जाएंगे। दो अपराधी जो यीशु के दोनों ओर थे, उनकी टांगे तोड़ने के बाद वे ले जाए गए, लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं था। सैनिकों ने देखा कि यीशु की श्वास पहले ही बंद हो गई थी, उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। भजन संहिता 34 अध्याय 19 से 20 पद कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। इसका मतलब यह है कि शैतान धर्मी मनुष्यों से बहुत नफरत करता है, यद्यपि धर्मी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाते। ये दुष्ट लोग धर्मी को मारने की कोशिश करते हैं, परंतु यहोवा उसको उनसे मुक्त करता है। इसलिए यदि हमारा परमेश्वर हमको मुक्त नहीं करता, तो हम त्यागा महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सदा रक्षा करता है और हमें मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं टूट पाती। ये भविष्यवाणी जो पुराने नियम में है सब पूरी हो गई। यीशु सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर चढ़े, परंतु यीशु स्वयं पापी नहीं थे। वह धार्मिक व्यक्ति थे जो कि निर्दोष और निष्कलंक थे। परमेश्वर ने यीशु को सुरक्षा दी, इसीलिए यीशु की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई, जैसे कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई है। और साथ ही गिनती 9 अध्याय 12 पद और निर्गमन 12 अध्याय 40 पद में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मेमने को खाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। बाइबल में मेमना यीशु का प्रतीक है। जैसा भविष्यवाणी की गई थी, यीशु की हड्डी नहीं तोड़ी गई। यूहन्ना 19 अध्याय 34 पद कहता है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और तुरंत उसमें से लहू और पानी निकला। यीशु का सिर और चेहरा कांटों के ताज के कारण लहू से ढका हुआ था, और उसका पूरा शरीर भी कोड़ों की मार से कटा हुआ था। उसका शरीर चारों ओर लहू से बहुत ही दयनीय हालत में था। यीशु की इतनी दयनीय अवस्था में देखने के बाद, और यह देखने पर भी कि वह पहले से मर गया था, फिर भी उसे बच्चे से बेधा, जैसे हिंसक पशु मरे हुए पशुओं को फाड़ता है, उन्होंने भी तो उसे बच्चे से बेधा। उन्होंने ऐसा दुष्ट और निर्दय काम किया। केवल इसे देखकर हम देख सकते हैं कि मनुष्य कितना दुष्ट है। आज पाप प्रचलित है और यह दुष्टता यीशु के समय से कहीं ज्यादा है। यद्यपि हम उन्हें सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए ऐसी स्पष्ट गवाहियां दिखाते भी हैं, दुष्ट लोग फिर भी परमेश्वर में विश्वास नहीं करना चाहते। वे सांसारिक लालसाओं के पीछे जाते हैं और पाप से और भी अधिक कलंकित होते जाते हैं। जो अधिक दुष्ट है वे उन्हें सताते और घृणा करते हैं जो उन्हें सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यदि हम यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करते हैं और चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाते हैं, तो वहाँ बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। तो भी यीशु उन सब लोगों के लिए क्रूस पर चढ़े। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने हृदय में उस परमेश्वर के प्रेम के लिए जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और प्रभु के प्रेम के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन पापियों के लिए दे दिया, धन्यवाद करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, यीशु के पंजर से बेधा जाना, लहू और पानी बहाने में आत्मिक अर्थ पाया जाता है। सबसे पहले यह इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आया। यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद कहता है कि यीशु वचन है, जो इस पृथ्वी पर देह में होकर आया, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जो आत्मा है एक मानव देह में आया, क्योंकि वह एक मनुष्य के रूप में आया। उसके पास उद्धारकर्ता बनने की योग्यता है। मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बनने की पहली शर्त यह है कि वह मनुष्य होना चाहिए। स्वर्गदूत या पशु मानव जाति को उनके पापों से मुक्त नहीं कर सकते। केवल एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के पापों को मुक्त कर सकता है, इसलिए वे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यीशु मानव शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए, जिसके अंदर हड्डियां और मांस हमारे समान था। इसी प्रकार से एक बार फिर से सिद्ध करने के लिए कि यीशु के पास मानव शरीर था, यह लिखा गया है कि जब बर्छे से उसे भेदा गया तब पानी और लहू उससे निकला। दूसरा, यीशु का बहता हुआ लहू और पानी यह गवाही देता है कि मानव जाति जिसके पास शरीर है वह ईश्वरीय स्वभाव में हिस्सेदार बन सकता है, अर्थात आप और मैं भी ईश्वरीय स्वभाव में भागी हो सकते हैं। मत्ती 5:48 कहता है, इसीलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पहला पत्रस 1:16 कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये आज्ञाएं हैं। परमेश्वर हमको आज्ञा देता है कि हम संपूर्ण बने क्योंकि वह संपूर्ण है, और पवित्र बने क्योंकि वह पवित्र है। यदि आप कहते हैं कि मेरी आत्मा तो इच्छुक है पर मेरा शरीर कमजोर है, यह केवल एक बहाना बनाना है जिसका कोई अर्थ नहीं है। यह ऐसे लोगों के लिए था जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। हमारा पिता परमेश्वर पवित्र और संपूर्ण है, इसलिए वह चाहता है कि उसकी संतान भी पवित्र और सिद्ध हो। फिलिपियों 2:5 कहता है, इस प्रकार का स्वभाव आपका हो, और किस प्रकार का स्वभाव? जैसा यीशु मसीह में था। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यीशु मसीह के समान हम स्वभाव रखें। दूसरा पत्रस 1:4 कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़हार से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। हमको इस ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना है। यीशु का शरीर मनुष्य के समान था, परंतु उसने पूरे जीवन काल में बिना पाप किए हुए एक पवित्र जीवन जिया, क्योंकि उसके पास हमारा ही स्वभाव के समान स्वभाव था। उसके पास मनुष्य के समान भावनाएं थी, परंतु उसने तो भी शैतान की परीक्षाओं को पराजित किया और सत्य के द्वारा जीवन जिया। उसने केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन हाँ और आमीन के साथ किया और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पूरा किया। इसीलिए हम भी यीशु के समान ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। यदि कोई प्रभु पर विश्वास करता है और जोशीली प्रार्थनाएं करता है और अपना श्रेष्ठ प्रयत्न करता है, वह परमेश्वर से अनुग्रह और सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है और पवित्र आत्मा की सहायता की पाप और बुराई को दूर करें। तीसरा, यीशु ने अपना लहू और पानी बहाया, वह इस बात की सच्चाई को प्रमाणित करता है कि हमने सत्य जीवन और अनंत जीवन यीशु के लहू और पानी के द्वारा प्राप्त किया है। यीशु का लहू, जिसमें ना तो कोई मूल पाप ना कोई स्वयं के किए गए पाप थे, यह बहुमूल्य पाप है जिसमें कोई दोष या कलंक नहीं। हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं और हम अनंत जीवन इसी लहू के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। और साथ ही पानी आत्मिक तौर पर वचन को दर्शाता है। जिस सीमा तक हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, हम पापों को दूर कर सकते हैं और धार्मिक बन सकते हैं। इसीलिए लहू और पानी जो यीशु ने बहाया वह सामर्थ्य लहू और पानी है जो हमें बदल सकता है, और जीवन का लहू और पानी है जो हमें मृत्यु से बचाता है। यीशु का लहू और पानी बहाना एक बार फिर से साक्षी देता है कि हम क्षमा कर दिए गए हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करके जीवित रहने के लिए सत्य जीवन पाया है। आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु दुखों के मार्ग में आनंद और धन्यवाद के साथ चले कि बहुत सी आत्माएं उनके दुखों के द्वारा बचाए जा सके। क्रूसारोहण के अंतिम क्षण तक उन्होंने दुख से बचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तब तक प्रार्थना की जब तक उनका पसीना लहू की बूंदे न बन गया पिता के इस प्रावधान को पूरा करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप भी हमेशा यीशु के दुखों को और लहू और पानी बहाने के प्रेम के बलिदान को याद रखेंगे जो यीशु ने हमारे लिए उठाए। यीशु ने सारे दुखों को उठा लिया और अपना लहू और पानी बहाया। यह किसी और के कारण नहीं, वरन ये आपके पापों के कारण हुआ, और आपको बचाने के लिए। यीशु का यह महान प्रेम हमने प्राप्त किया है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इफिसियों 5:1-2 कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु के प्रेम को अपने हृदय की गहराई में अनुभव करेंगे और इसे याद रखेंगे और पापों और बुराइयों को जल्दी से दूर करेंगे और परमेश्वर के खोए हुए प्रतिबिंब को पूरी रीति से प्राप्त करेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप अंतिम दिन में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करेंगे पूरी तरह से और अनंत जीवन का आनंद लेंगे। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखे जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाए, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, पूरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। पूरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारे, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।